हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स नंबर 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपीका कांता, श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी, प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैतं गदाधर, श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 3। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वा అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో ధ్యాత్మ ఉచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మ సంగీతః అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో ధ్యాత్మ ఉచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మ సంగీతః అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మ సంగీతః అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మ సంగీతః. శబ్దార్థ శ్రీ భగవాన్ వాచ్. अर्थात जो अभी हमें बता रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात परम पुरुष भगवान बता रहे हैं. क्या? अक्षरम ब्रह्म परमम. अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो, जो कभी विनाश जिसका ना हो, उसको कहते हैं अक्षर. अक्षरम ब्रह्म. ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म. अभी अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ना किम तद ब्रह्म, तो ब्रह्म के विषय में भगवान कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम. परमम मतलब दिव्य. जो ब्रह्म जिसकी बात तुम पूछ रहे हो वो दिव्य है और वो अविनाशी है. वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता और वो दिव्य होता है. और उसका स्वभाव क्या है? स्वभावो ध्यात्ममुच्यते. उसका सनातन स्वभाव, उसकी सनातन प्रकृति है. क्या प्रकृति है? कि वो कभी क्षय नहीं होता, अविनाशी है. और इसका अविनाशी होना यानी ये ना कभी क्षय होता है और ना ही कभी जन्म लेता है. ना जायते मृयते वा कदाचन. तो ये कभी ये सदैव के लिए सनातन है, इटर्नल है. और ये कभी क्षय नहीं होता तो उसको ब्रह्म कहते हैं. वो वस्तु को ब्रह्म कहते हैं. और उसका जो स्वभाव है, स्वभावो ध्यात्ममुच्यते, उसके स्वभाव को आध्यात्म कहते हैं. जैसे अर्जुन के दो प्रश्न यहाँ पर हो गए. अर्जुन ने क्या कहा? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम. ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? तो भगवान ने बताया अक्षरम ब्रह्म परमम. जो ब्रह्म है वो अविनाशी जीव है और उसका जो स्वभाव है, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, उसका जो इटर्नल स्वभाव है वो अध्यात्म है. ठीक है, आगे भगवान कहते हैं भूत भावोद्भव करो. मतलब जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला भूत यानी जीव, भावोद यानी कि उनके भौतिक शरीर के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके कारण, फिर जो का उसके कारण विसर्ग. विसर्ग मतलब वापस जन्म लेना, वापस मरण लेना, वापस जन्म. ये सृष्टि क्यों बनी है? क्योंकि जीव जो है वो इस भौतिक शरीर में जब आ जाता है तो फिर वो कार्य करता है. क्योंकि उसको वो याद नहीं रहता. क्या? उसका अविनाशी स्वरूप याद नहीं रहता. और वो अविनाशी स्वरूप किधर से आया है वो याद नहीं रहता. और उसका क्या लक्ष्य है वो याद नहीं रहता. तो क्या करता है? भूत भावोद्भव करो. वो जीव भौतिक शरीर में आकर विभिन्न कार्य करता है. उसके कारण विसर्ग. विसर्ग मतलब सृष्टि होती है. कर्म संगीता. और इन चीजों को जिस जो ये भावों के अनुसार जो कार्य कर रहा होता है उसको कर्म कहा जाता है. कर्म मैंने सकाम कर्म संगीता मतलब कहलाता है. क्योंकि अर्जुन का तीसरा प्रश्न क्या था? किम कर्म पुरुषोत्तम. ये जो फर्स्ट श्लोक की प्रथम लाइन है उसको वापस से देखेंगे, ठीक। उसमें अर्जुन पूछ रहे हैं किम तद् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। और भगवान ने इन तीन चीज़ों को इस एक श्लोक में पूरी तरह से डिफाइन किया है। भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, ये जो अविनाशी जीव आत्मा है वो ब्रह्म है। स्वभावोध्यात्मम उच्यते, उसका जो नित्य स्वभाव है वो अध्यात्म है। और भूत भावोद्भव करो, और जब वो जीव एक शरीर में आ जाता है और उस शरीर के अंदर जो कार्य करता है वो विसर्ग, वो उसके पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, कर्म संहिता, और उन कार्यों को कर्म कहा जाता है। अब अनुवाद देखिए, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अब यहाँ पर यूँ समझो कि अर्जुन ने जितने क्वेश्चन पूछे, कितने पूछे थे, 8 क्वेश्चन पूछे थे ना भगवान से, क्या किम तद्धम्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और आदिभूत क्या है, यानी ये भौतिक जगत क्या है, आदिदैव यानी देवता क्या है। यहाँ 5 प्रश्न, 5 चीजें जो है वो पहले श्लोक में पूछी और 3 चीजें दूसरे श्लोक में। अधियज्ञ कथम कोत्र, अधियज्ञ क्या है, देहिस्मिन् मधुसूदन, वो इस देह में कैसे रहता है, प्रयाण काली च कथम, और जब मृत्यु का समय होता है गेयोस्मि नियतात्म भी, कि वो मृत्यु के समय जो आपकी भक्ति में लगे रहते हैं वो आपको कैसे याद करते। 3 चीजों को भगवान आज हमें बता रहे हैं। अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर जीव आत्मा है उसको ब्रह्म कहा जाता है, जो कभी जिसका कभी नाश नहीं होता। स्वभावोध्यात्मम उच्यते, और उसका जो स्वभाव है जो कि इटर्नल स्वभाव है उसको आध्यात्म कहते हैं। अब क्योंकि वो उसका स्वभाव तो इटर्नल है लेकिन जब वो भौतिक शरीर में आ जाती है तो फिर वो भौतिक कार्य करने लगती है, क्योंकि उसका ज्ञान जो है वो माया के द्वारा हर लिया जाता है। तो वो भौतिक कार्य जो होते हैं भूत भावोद्भव करो, उन कार्यों को कर्म, विसर्ग कर्म संगीत, उनको कर्म कहा जाता है, और इसके कारण उसे बारंबार इस संसार में आना पड़ता है। समझ में आ गया? अभी शीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे और हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी नहीं बदलता। ब्रह्म यानी जीव आत्मा, उसका विधान क्या है, अविनाशी है और नित्य है, ये सदा से है और कभी खत्म नहीं होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं chapter 2 verse number 20, न जायते मिर्यते वा कदाचिन् नायम् भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यति अन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, ये न कभी जन्मी है न जन्म लेती है और न ही कभी जन्म लेगी। शरीर के मारे जाने पर आत्मा कभी नहीं मरती। 2.23 में भगवान ने और भी अधिक स्पष्ट करके कहा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं खेद्यन्ति आपो నశోషయతి మారుత నయనం చిన్నంటి శస్త్రాన్ని. ఇస్ ఆత్మకు శస్త్ర కాట్ నీ సక్తే, నయనం దాతి పావక అగ్ని ఇస్కో జలా నీ సక్తే, నశయనం క్లేదయంత యాపో పాని ఉసి గలా నీ సక్తా, నశోషయతి మారుత ఔర్ హవా ఉసి సుఖా నీ సక్తే. యే అవినాశీ హై ఔర్ యే నిత్య హై, ఇస్కా కభీ క్షయ నహీ హోతా. तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसका विधान कभी भी नहीं बदलता. ये ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा है कि वो अविनाशी है, लेकिन फिर कभी ऐसा समय आएगा कि वो विनाश होने लगेगी. नहीं, वो इटर्नल है, नित्य है और अविनाशी है. वो कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है उसका और कभी खत्म भी नहीं होगी. और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु ब्रह्म से परे परब्रह्म है, ये याद रखने. अभी अर्जुन ने सिर्फ एक ही बात पूछी थी यहाँ पर, केम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है. लेकिन ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ब्रह्म आया कहाँ से है. ये ब्रह्म अर्थात जो जीव आत्मा है, जो इटर्नल है, अविनाशी है, नित्य है, उसका स्रोत है परब्रह्म. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु ब्रह्म से परे परब्रह्म है, यानी ये ब्रह्म जो है, ये जीव आत्मा जो है, आया कहाँ से है, परमात्मा से. अब श्रील प्रभुपाद जी इस चीज को और भी क्लियर करके हुए बताते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान. जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से विभिन्न भिन्न होता है. अब यहाँ पर दोनों चीजें श्रील प्रभुपाद जी ने बता दी कि ब्रह्म का क्या मतलब है, जीव आत्मा, और परब्रह्म का क्या मतलब होता है, भगवान यानी परमात्मा. लेकिन भले ही ये जो जीव है वो अक्षर है, वो नित्य है, अविनाशी है, लेकिन जब वो इस भौतिक जगत में आ जाता है तो उसकी स्थिति भिन्न हो जाती है. भिन्न हो जाती है मतलब अपने स्वभाव को बदल देता है. उसका स्वभाव क्या है, नित्य होना और इटर्नल अविनाशी होना. ये ना कभी स्टार्ट हुआ है और ना ही कभी खत्म होगा. लेकिन क्योंकि वो इस भौतिक जगत में आता है तो वो अपनी स्वाभाविक स्थिति से गिर जाता है, समझो. तो श्री प्रभुपाद जी आगे बताते कि भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना. अब वो इटर्नल जीव है, वो क्योंकि भगवान का अंश है तो उसका एक ही कार्य है, क्या, भगवान की सेवा करना. परंतु क्योंकि वो भौतिक शक्ति इस माया के कंट्रोल में आ जाता है, फिर वो अपने इस इटर्नल स्वभाव को भूलकर क्या करना चाहता है, इस भौतिक वस्तुओं पर प्रभुत्व जताना चाहता है. प्रभुत्व जताना मतलब वास्तविकता क्या है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है सिवा इसके कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, इसके अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कुछ और है इसके कि कृष्ण मेरा स्वामी है. वास्तव में जीव की यही डेफिनेशन है कि कृष्ण उसका स्वामी है और वो कृष्ण का सेवक है. लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में जब वो आ जाता है तो उसका स्वभाव चेंज हो जाता है. क्या हो जाता है, वो समझता है ये भौतिक वस्तुएं जितनी भी मुझे मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही हैं वो सब मेरी हैं. मैं किसका दास हूँ ये भूल जाता है, मेरा क्या क्या है वो याद रख देता है. ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी ज्वेलरी है, मतलब हर एक वस्तु पर अधिकार जमाना शुरू कर देता है. वास्तव में इसकी स्वाभाविक स्थिति ये नहीं, स्वाभाविक स्थिति क्या है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना, बस ये जीव का काम है. लेकिन अब इस संसार में आकर वो सोचता है कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति से हटकर इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जताकर या फिर मेरा 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 वस्तुओं को मेरा बनाकर बहुत आनंद करूँगा. लेकिन अब यहाँ पर जो कर्म की व्याख्या होगी ना, उसमें हमें पता चलेगा कि वो उसके ये जो भौतिक स्थिति में आकर अपने रियलिटी को भूल जाना उसके लिए कितना खतरनाक हो जाता है. आनंद का सवाल पैदा नहीं होता जब आप अपने स्वभाव को भूलकर कुछ और करने लगो, है ना। जीव क्या, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है ना कि वास्तव में उसकी स्थिति क्या है, भगवान का दास होने की, लेकिन संसार में आकर वो अपनी रियल स्थिति को भिन्न कर देता है, भूल जाता है, तो फिर वो उसी के अनुसार कार्य करता है। अब कोई भी व्यक्ति जब अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाएगा तो उसे कोई कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे समझो एक मछली है, वो अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाए कि मैं मछली हूँ, और दूसरों को देखे कि ये सब कितने सुखी हैं, ये तो सब रोज़ाना गार्डन में जाते हैं और रोज़ाना इतने अच्छे से होटल्स में जाके भोजन खाते हैं, इतने बड़े बड़े एसी रूम में रहते हैं और कितनी अच्छी अच्छी कार में ट्रेवल करते हैं और एरोप्लेन में भी बैठते हैं, मैं तो देखो सारा दिन मछली बनकर इस ना समुद्र में पड़ी हुई हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, आज से मैं इस समुद्र में रहना छोड़ देती हूँ, मैं भी बाहर जाऊँगी, इंजॉय करूँगी। बाहर आके ही वो तड़पने लगेगी, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है कि मुझे जल में रहना है, जल से दूर रहकर वो तड़पने लगेगी। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, इसके अतिरिक्त आत्मा का कोई और स्वभाव नहीं है। वो इस चीज़ को भूलकर यदि इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने की इच्छा करती है तो वो तड़पने लगती है। इस संसार में कभी भी आत्मा को आनंद नहीं आ सकता, चाहे संसार का सबसे ज़्यादा उसे सारा का सारा धन प्राप्त हो जाए, इस संसार की सारे से सारे की सारी एजुकेशन प्राप्त हो जाए, इस संसार की सारे से सारे की सारी सुंदरता प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, बल प्राप्त हो जाए, लेकिन जीव आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। हम इस संसार में आकर इन्हीं चीज़ों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना, सारा यही प्रयत्न करते हैं कि भाई मुझे धन प्राप्त हो, मुझे यश प्राप्त हो, मुझे सुंदरता प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मान सम्मान हो, लेकिन ये सारा का सारा यदि किसी जीव को मिल जाए तो भी वो आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव क्या है कि मैं भगवान के दास की तरह जब भगवान की सेवा करूँ तो जब भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे तब ही मुझे आनंद आ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक चेतना में कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करनी। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो इसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाती है। अभी देखो, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक स्वभाव को छोड़ देता है और जब वो भौतिक स्वभाव को धारण करता है, भौतिक चेतना, दो चेतना होती हैं, एक कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना, और दूसरी होती है भौतिक चेतना। जीव का वास्तव में जो रियल स्वभाव है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस होना है, लेकिन जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होता बल्कि इस भौतिक जगत की चेतना उसके अंदर हावी हो जाती है तो क्या होता है, इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। अब क्योंकि जैसी चेतना होगी वैसा ही उसको शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। इसको हम आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत क्लियर करेंगे। और आगे कहते श्री प्रभुपाद जी, यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। अब कार्य करते हैं, क्योंकि भौतिक चेतना आ गई तो कुछ ना कुछ कार्य करोगे आप, किसी से प्रेम करोगे, किसी से द्वेष करोगे, और कोई ना कोई भौतिक वस्तु से आपके अटैचमेंट हो जाएगी, फिर उसके प्राप्त करने के लिए कार्य करोगे, जो भी करोगे वो आपके कर्म हो गए, ठीक है। और वो कर्म जो होते हैं उनके कारण आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता है, सारे कर्म आपको बंधन में डालते हैं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी भी परब्रह्म नहीं कहा जाता। मतलब इस चीज को श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्म और परब्रह्म ये दो हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, यहाँ तक सही है, लेकिन जीव ब्रह्म हो सकता है, परब्रह्म नहीं हो सकता। परब्रह्म तो भगवान ही होता है। तो जीव को परब्रह्म कभी नहीं कहा जा सकता। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव आत्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करती है, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा यानी आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस ब्रह्म, देखो अर्जुन ने ब्रह्म पूछा है, अभी हम उसी के विषय में पढ़ रहे हैं, उसके बाद अध्यात्म और उसके अध्यात्म कर्मों के विषय में भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि ब्रह्म क्या है, अक्षर ब्रह्म, ये जीव ब्रह्म है और उसका स्वभाव कर्म अध्यात्म है, ठीक है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। तो इन दोनों को साथ साथ में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसे तो उसका स्वभाव क्या है, आध्यात्म में चेतना में उसका स्वभाव है भगवान की सेवा करना, लेकिन भौतिक स्वभाव में आकर, भौतिक चेतना में आकर वो अपने स्वभाव को बदल देता है और फिर वो भौतिक संसार को प्राप्त करने में या उस पर प्रभुत्व जताने में अपनी सारे कार्य करता है, जिसके कारण उसे दोबारा दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे हैं, ये बात वापस से लाइन देखिए, जीव आत्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा यानी आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। अब जीव भगवान की तटस्थ शक्ति कहलाता है। यहाँ पर तीन शक्तियों के विषय में हम जानेंगे, भगवान की एक अंतरंगा शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति है और एक जीव है, ये जिसको ब्रह्म कहा जा रहा है वो जीव है, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति यानी तट पर, सेंटर की शक्ति है। अब सेंटर में एक समझो वो है, ब्रिज है, अब या तो आपको उस तरफ जाना है या तो आपको उस तरफ जाना है, आप इस ब्रिज के ऊपर नहीं खड़े रह सकते, आपको उसको क्रॉस करना है, या तो आपको आध्यात्मिक शक्ति के पास जाना है या तो आपको भौतिक शक्ति के पास जाना है, ये जीव को निर्णय लेना होता है। और निर्णय वो किस चीज के आधार पर लेता है, वो पूरा का पूरा उसको फ्री विल प्राप्त है, पूरा का पूरा फ्रीडम है, वो अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेता है, यानी जीव की अपनी इच्छा है। आज आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हो, ये आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला पढ़ने के लिए, नहीं, आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो, है ना। और अब अगर आपकी इच्छा हो, आप अभी इस ऑडियो को बंद करके आप बैठ के ना टीवी फिल्म देखने चले जाओ, वहाँ पर थिएटर में चले जाओ या सिनेमा में चले जाओ या फिर घूमने चले जाओ, पार्क में चले जाओ या कुछ भी करो, आपकी अपनी इच्छा है ना। तो उसी तरह से जीव की अपनी इच्छा होती है कि वो आध्यात्मिक शक्ति में आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहकर भगवान की दासत्व को स्वीकार करे या भौतिक शक्ति में आकर प्रभुत्व जताने का कार्य करे, ये उसको पूरा का पूरा फ्रीडम हासिल है, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, कभी कभी वो आध्यात्मिक शक्ति की ओर चली जाती है उसकी इच्छा होती है तो, और कभी कभी वो भौतिक शक्ति की ओर आ जाती है उसकी इच्छा होती है तो। यहाँ पर ये बात समझनी है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ओन डिजायर, आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो या इस संसार में तड़पना चाहते हो, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना चाहते हो। ये जीव जब इस संसार में आता है तो उसकी अपनी इच्छा और इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा ना। जैसे अगर आपकी इच्छा है आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, भक्तों का संग करोगे, है ना। जब भक्तों का संग करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी भक्ति में उन्नति होगी, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप भक्तों का संग नहीं करोगे, फिर सांसारी लोग जो अभक्त हैं उनका संग करोगे और उनका संग करके आपको और भी भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। यानी कि अब अगर वो भौतिक शक्ति की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाता है तो उसे भौतिक शरीर मिलता है, और आध्यात्मिक प्रकृति के अनुसार यदि वो कार्य करता है तो फिर उसे आध्यात्मिक शरीर मिलता है। शरीर मिलना अनिवार्य है, मतलब कोई भी ऐसा समय नहीं है कि जीव आत्मा जो है उसको शरीर नहीं मिले। इस बात को श्रील प्रभुपाल जी ने फिर भगवान श्री कृष्ण ने 2.12 में क्लियर किया था। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातु नासं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं था कि तुम नहीं थे या ना या मैं नहीं था न तो हम ने में जना दीपा और ये सारे राजा नहीं थे न चाहे वह भविष्य मह और ना ही कभी भविष्य में ऐसा होगा सर्वे वयमत परम कि हम लोग नहीं रहेंगे यानी कि हम किसी न किसी रूप में जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा क्षय हो जाएगा हम समाप्त हो जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है। आत्मा का कभी क्षय नहीं होता आत्मा किसी न किसी रूप में वो होती है न चाहे वह ना भविष्यामा अभी भी ऐसा नहीं है और ना ही कभी भविष्य में ऐसा होगा। तो फिर वो जैसा जैसा कार्य करता है तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे ना कि भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति के साथ साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जैसा आप कार्य करोगे उसके अनुसार आपको शरीर मिलेगा। जैसे इस चीज को भगवान श्री कृष्ण 14.18 में बहुत अच्छा बताते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। अगर सत्व गुण में रहकर कार्य करोगे तो ऊपर के लोकों में जाओगे। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अगर आप रजोगुण में रहकर कार्य करोगे तो मध्य में। मध्य में क्या है देखो 14 लोक है मध्य में पृथ्वी है ऊपर 7 लोक है नीचे 6 लोक है। तो उस तरह से अगर आप सत्वगुण में रहकर कार्य करोगे तो ऊपर जाओगे अगर रजोगुण में रहकर कार्य करोगे तो सेंटर में यानी पृथ्वी लोक पर रहोगे। पानी में रहते हैं रेंगते हैं उनको। और उसके बाद 10 लक्षाएं पक्षियां पक्षी जो उड़ते हैं वो 10 लाख और 30 लक्षाणी पशवम 30 लाख जो चार पांव पे चलने वाले है ना जानवर वो 30 लाख की संख्या और चतुर लक्षाणी मानवा 4 लाख की संख्या मनुष्य तो ये मिलकर 84 लाख योनियां बनती हैं। और आप जैसा जैसा कार्य करते हो उसके अनुसार आपको किसी एक योनि के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे आज का मनुष्य कितना ज्यादा स्ट्रगल करता है बहुत ज्यादा गधे की तरह कार्य करता है। हालांकि ये मनुष्य जन्म इस तरह से कार्य करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म क्यों मिला है मनुष्य जन्म आपको भगवान की भक्ति करने के लिए मिला। भगवान बताते हैं 9.33 में कि इमं प्राप्य भजस्वम इसे प्राप्त करके तुम्हारा एक ही काम है कि मेरा भजन करो। इसका मतलब ये नहीं अपने कर्तव्यों को छोड़कर लेकिन कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवरों के या फिर दूसरे कीड़े मकोड़ों के पशुओं के पक्षियों के शरीर में जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने जैसा कार्य किया। अब भगवान बोलेंगे आपको बहुत ज्यादा शौक है कार्य करने का तो उसके लिए मनुष्य जन्म को क्यों खराब कर रहे हो। थेरो मैं तुमको गधा बना देता हूँ। गधा सुबह से लेकर रात तक कार्य करता रहता है अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए। उसको पता भी नहीं है कि ये मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ। घास खाने के लिए यदि गधा कार्य कर रहा है तो फिर घास तो उसे बगैर किसी मालिक की नौकरी के बगैर ही जंगल में जाकर भी प्राप्त हो सकेगी। फिर वो घास खाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है गधे की तरह। गधा है तो गधे की तरह करेगा लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि मनुष्य भी कहता है भाई हम बोलते हैं आप सारा दिन इतना बिजी रहते हो आपको भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए भगवान की कथाओं को श्रवण कर। बोला नहीं इसके लिए समय नहीं है क्योंकि पापी पेट का सवाल है। अभी जाहिर सी बात है कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। लेकिन अभी खाली खाने के लिए अगर आप कार्य कर रहे हो तो खाना तो आपको किसी जानवर की योनि में भी मिल जाएगा। ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब तो पशुओं को भी सुलभ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि को क्यों बिगाड़ रहे हो? जाओ किसी ऐसे शरीर को प्राप्त हो जाओ जिसमें तुम अपनी इस इच्छा को सुविधा से प्राप्त कर सको, चाहे वो खाने की हो, चाहे भोग करने की हो, या चाहे कोई भी हो। इस भौतिक जगत में जैसी जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आपको वैसा वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यह मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। शास्त्र कहता है निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये निर्देह जो है, ये मनुष्य जन्म है बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, इतना सरल नहीं है। देवता भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं कि कभी हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो और उसके बाद हम भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लें, क्योंकि देवताओं को बहुत बहुत सालों तक उस लोक में रहना पड़ता है और उसके बाद फिर वहाँ से गिर जाते देवता। अभी हम इस पटपट में इस चीज़ को समझेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ कि जीव जैसा जैसा स्वभाव धारण करता है और जैसे जैसे कार्य करता है उसको वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। अब इस भौतिक जगत में उसको क्या क्या शरीर मिलते हैं? कभी देवता मिलता है, कभी पशु मिलता है, कभी पक्षी का। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि देवता भी भौतिक जगत के हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि ऊपर जो स्वर्ग लोग इत्यादि ऊपर है, सेंटर में पृथ्वी है और नीचे नरक लोग इत्यादि हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप कार्य करोगे उसे वैसे लोक में जाओगे। अशिला प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है। अभी कभी कभी सोचता है कि इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है, जो जीव कौन, ये ब्रह्म की बात हो रही है ना, जो भगवान ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं कि जैसा कार्य करेगा वैसा उसको जन्म मिलेगा। और कभी कभी सोचता है कि इस भौतिक जगत में आनंद नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ, स्वर्ग का देवता बन जाता हूँ। स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए कभी कभी वो क्या करता है, यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापिस आ जाता है। वह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। अब उसने जो कार्य किया उसके अनुसार उसको स्वर्ग मिलता है, परंतु फिर जब उसका क्षीण हो जाता है पुण्य तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 20 और 21 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। कृपया आप श्लोक देखा करो, जब भी मैं सेंटर में कोई श्लोक बोलूं तो उसको देख लिया करो आप पॉज करके। भगवान कहते हैं 9.20 में, त्रैविध्यामा सोमपाहा पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् देवी देव भोगा। तय विद्यामाम सोमपाह सुपूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्ग तिम प्रार्थयन्ते, यानी जो वेदों का अध्ययन करते हैं वे सोमरस का पान करते हैं और वे स्वर्ग प्राप्ति की घोषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। यज्ञरिष्ट्वा स्वर्ग तिम प्रार्थयन्ते, वो यहाँ श्री प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट से भगवान की भक्ति नहीं करते बल्कि देवताओं की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, और वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इन इंद्र के पवित्र स्वर्ग लोक में जन्म लेते हैं। फिर वो पाप कर्म उनके खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। फिर अपराध खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, इंद्र के स्वर्ग में आते हैं जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। फिर देवताओं की तरह उनको भी कोई देव शरीर प्राप्त होता है जिसके कारण वो देवताओं की तरह आनंद भोगते हैं। बहुत आनंद आता है स्वर्ग में। और स्वर्ग में आनंद भोगने के बाद क्या होता है, भगवान कहते हैं 21 में, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम काम लभन्ते तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। इस तरह से वो स्वर्गलोक में भोग भोगते हैं कब तक, विशालम बहुत समय तक। उसके बाद क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। और त्रयी धर्म मनुप्रपन्न, इस तरह से जो तीन वेदों के जो तीन वेदों में जो जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जब वो कार्य करते हैं, आप तीन वेदों में क्या लिखा हुआ है, इस देवता की पूजा करोगे ये मिलेगा, उस देवता की पूजा करोगे ये मिलेगा, ये चाहिए तो इधर जाओ, वो चाहिए तो उधर जाओ, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करते रहो। और अंत में भी ये लिखा है कि यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते तो भगवान के पास जाओ। लेकिन फिर जीव सोचता है अरे भगवान को प्राप्त करके क्या करना है, मजा करेंगे, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर अभी इस बात को भगवान बता रहे हैं तई धर्म मनु प्रपन्न, कि तीनों वेदों की जो जो लिखे हुए हैं उनको जो दृढ़ता से पालन करता है उनको क्या मिलता है, गतागतम काम काम लभन्ते, उन्हें केवल जन्म और मृत्यु, गतागतम आना जाना, बार बार जन्म लेते हैं बार बार मृत्यु मिलती है, बार बार जन्म लेते हैं बार बार मृत्यु है, काम कामा इंद्रिय सुख चाहना चाहते हैं ना, वो मेरी शरण में नहीं आना चाहते हैं, इंद्रिय सुख चाहते हैं, तो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में उन्हें फंसना पड़ता है। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है, क्योंकि जो जो जैसा जैसा कार्य करता है उसे वैसा वैसा उसको उसका रिजल्ट मिलता है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सीक्रेट बात बता रहे हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब जीव स्वर्ग में चला जाता है, अब यहाँ हमने पढ़ा क्षीणे पुण्य मृत्युलोक मिशन थी, कि जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो पुनः मृत्युलोक में गिरते हैं। गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं, इसके विषय में छांदोग्य उपनिषद के उदाहरण से श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, जो वैदिक यज्ञ करते हैं उनके विषय में बहुत ही विस्तृत बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। अब यज्ञ की वेदी में पांच अग्नियों को पांच प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। अब यज्ञ की वेदी है उसमें पांच अग्नियां हैं और पांच आहुतियां हैं। ये पांच अग्नियां कौन कौन सी हैं, स्वर्ग, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। पहले स्वर्ग है, फिर बादल है, फिर पृथ्वी है, फिर मनुष्य और उसके बाद स्त्री रूप में मानी जाती है, ठीक है। ये पांच अग्नियां हैं और उन पांच अग्नियां हैं और पांच आहुतियां कौन सी हैं, श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य। अब इनको कैसे कैसे होता है, ये परिक्रिया कैसे होती है, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है। पहला है यज्ञ स्वर्ग प्राप्त कर, मतलब कोई भी कार्य स्वर्ग लोक प्राप्त करने के लिए जीव यज्ञ करता है और उस जगह को प्राप्त करता है, ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, यानी फिर वो क्या बन जाता है, बादल के अंदर एक वर्षा की बूंद बन जाता है। वो जीव स्वर्ग से निकलता है, गिरता है और बादल के अंदर एक वर्षा की बूंद बन जाता है और वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप धारण करता है। अब उतरा और पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी पर अन्न का रूप धारण कर देता है, ठीक। उसके बाद उस अन्न को मनुष्य खाता है, है ना, कोई भी मनुष्य जब खाता है, उसके कोई मेल प्राणी खाता है तो जिससे वीर्य में परिणति होता है, फिर वो वीर्य में बदल जाता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसने इतने सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया था, अभी वो क्या बन गया, एक पानी की बूंद बन गया, और उसके बाद वीर्य बन गया, जब पानी की बूंद से एक अनाज का अनाज के अंदर परिवर्तित हो गया, और फिर वीर्य बनकर जब परिणित हो जाता है, जो स्त्री के घर में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है, फिर जब वो मनुष्य जो खाता है उसको, उसके बाद विवाह के बाद जब वो स्त्री को गर्भदान करता है तो वो मनुष्य बन जाता है। वो व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद गिरा तो कहाँ गिरा, ये मनुष्य पुनः यज्ञ करता है। अभी श्री प्रभुपाद जी उसको चक्कर को बता रहे हैं कि फिर क्योंकि उसका स्वभाव है, वो बार बार इसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, वो आनंद को हासिल करना चाहता है, फिर बोलता है कि पहले कितना मज़ा था, स्वर्ग में गया था, अभी वापस से स्वर्ग में जाऊँगा। कोई सूक्ष्म उसके अंदर जो इच्छा रहती है उसके अनुसार फिर वो यज्ञ करता है और पुनः वही चक्कर चलता है, फिर वापस से क्या होता है, स्वर्ग में जाता है, बादल में आता है, फिर पृथ्वी में अनाज बन जाता है, अनाज को मनुष्य खाता है, फिर गर्भ होता है, फिर जन्म लेता है, और यही चक्कर वो चलाता रहता है। अब जैसी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार वो जन्म लेता जाता है, और इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता जाता रहता है। इस तरह से तो कर्म की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी, और जन्म और मृत्यु का बंधन कभी खत्म नहीं होगा। आगे श्री प्रभुपाद जी ये बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। ना बाबा, स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग जाके क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यत् कृत्वा न निवर्तन्ते, वैसी जगह जहाँ पर जाकर मुझे कभी भी नहीं आना पड़े इस दुखों भरे संसार में। तो वो क्या करता है, वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। ये कर्मों के विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि जैसे जैसे आप कर्म करोगे उसके अनुसार आपको जन्म मिलेगा। पहले ये बताया कि 84 लाख योनियों में आपको कोई ना कोई जन्म मिलेगा, उसके बाद अगर आप उनसे भी ऊपर बढ़ते हो और यज्ञ करते हो, देवता बन जाते हो, तो देवता बनने के बाद भी क्या आपको बनना पड़ेगा, एक पानी की बूंद बन के अनाज में, अनाज के बाद पुरुष के वीर्य में, और फिर गर्भधान होकर स्त्री की अंदर से जन्म देना पड़ेगा, और ये जन्म मरण की श्रृंखला यूं चलती रहेगी। इसलिए वास्तव में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहते, वे क्या चाहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, वे ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करते हैं। तो क्या तैयारी करनी है, ये तैयारी है एग्जामिनेशन की कि अंत समय, अभी हम प्रयाण काले का भी पढ़ेंगे, प्रयाण काले भी एक प्रश्न है ना अर्जुन का, तो उस मनुष्य जन्म में इस प्रयाण काले समय की तैयारी करनी है, सीखना है कि कैसे मैं वैसा कार्य करूं कि अंत समय में मेरी वो गति हो जिसके कारण मुझे पुनः इस संसार में आना ना पड़े, अर्थात भगवान की स्मृति। जैसे भगवान को अर्जुन ने क्या पूछा, प्रयाण काले से कथम, कि कैसे मैं वैसा कार्य करूं कि अंत समय में मेरी वो गति हो जिसके कारण मुझे पुनः इस संसार में आना ना पड़े, अर्थात भगवान की स्मृति। जैसे भगवान को अर्जुन ने क्या पूछा, प्रयाण काले से कथम, ये योसि नित्य नियतात्मा भी, कि जो मृत्यु के समय आपका भक्त होता है आपको कैसे याद करता है, उसकी तैयारी कैसे करता है, उसके विषय में भगवान बहुत ही सुंदर बताएंगे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरय इत्यच। आप अगर तैयारी करना चाहते हो ना मेरे धाम में आने के लिए, तो आपको हर समय मुझे याद करना पड़ेगा, हर एक क्षण में मुझे याद करना पड़ेगा। तो ये तैयारी है हर एक क्षण में, क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह महामंत्र को जप करते रहेंगे और भगवान के पवित्र नाम के साथ साथ भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहेंगे, तो तैयारी कर रहे हैं हम उस एग्जामिनेशन में पास होने की, जिसमें अगर पास हो गए तो फिर भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के निर्विशेष वादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वह गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का उद्धृत करते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं कि वैसे तो परब्रह्म वो है, उसका कोई फेस नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई ना आकार नहीं है, लेकिन फिर इस जगत में वो जो आता है तो ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, यानी कि वो जीव बन जाता है, परब्रह्म से ब्रह्म में आ जाता है। और इसके समर्थन में वो क्या बताते हैं, भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7-5 श्लोक, क्या ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, के जीव जितने भी हैं वो मेरे अंश हैं। इसका मतलब वो क्या सोचते हैं कि सारे जो परब्रह्म है वो सारे जीव बन गया, अब उसकी कोई रियलिटी नहीं बची, वो खुद से कुछ नहीं बचा, वो सब है ना इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि ममैव अंश जीव भूत जीव जीवलोक जीव भूत सनातन, ये मेरा सनातन शाश्वत अंश है। ऐसा नहीं है कि बाद में बना, ये तो शाश्वत है, इटर्नल है, शुरू से ही मेरा अंश था। ऐसा नहीं है कि पहले मेरे अंदर चिपका हुआ था, फिर मैंने उसको निकाल के सारे जीवों की मैं अपने आप को टुकड़े टुकड़े करके सारे के अंदर अपना अपना एक अंश डाल दिया, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं ये तो मेरा शाश्वत अंश है, ममैव अंश जीवलोक जीव भूत सनातन। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, परंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरते। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से जीव कभी वीर्य बनकर, कभी बारिश का एक कतरा बनकर, या कभी जन्म मरण के चक्कर में फंसता है अपने कर्मों के अनुसार, तो भगवान ऐसे नहीं होते हैं, अच्युत कभी भी नीचे नहीं गिरते। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। वो इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भी इस संसार में आते हैं, गिर जाते, फिर अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहते। भगवान का वास्तविक स्वरूप जो है वो गौलोक वृंदावन धाम में इटर्नल रहता है। फिर भगवान अपने अपने इच्छा के अनुसार आते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कैसे क्यों आते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि योगे योगे, अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए संसार में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी इस तरह जैसे जीव गिरा है उस तरह गिरते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। आगे श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं, यह स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीव आत्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। तो ये बात तो हमें फिर भी समझ नहीं है कि ब्रह्म अलग है परब्रह्म अलग है, इन दोनों को एक नहीं मानते, जैसे निर्विशेषवादी मानते हम सब ब्रह्म है, भले हम सब ब्रह्म है लेकिन हम सब कभी परब्रह्म नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन के 3 क्वेश्चंस को क्लियर किया। अक्षरम ब्रह्म परमम, के जो जीव आत्मा है जो अविनाशी है वो क्या है, ब्रह्म है। स्वभावोध्यात्मम उच्यते, उसका जो स्वभाव है वो आध्यात्म कहलाता है। स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेन नित्य दास, भगवान की सेवा करना उसका नित्य स्वभाव है, उसको आध्यात्म कहते हैं। और भूत भावोद्भव करो, जब संसार में आ जाता है तो इस भौतिक प्रकृति के कारण वो अलग अलग क्रियाएं करता है आनंद प्राप्त करने के लिए, तो फिर उसके अनुसार उसको अलग अलग जन्म मिलते हैं, कभी फिर इस भौतिक जगत के आनंद को छोड़कर यज्ञ करना चालू करता है, तो फिर उसको स्वर्ग में देवता बना दिया जाता है, फिर भी वहां से नीचे उतर के आता है। और इस तरह से जन्म मरण के चक्कर में जो आपको फंसाता है, विसर्ग कर्म संगीता, उसको कर्म कहा जाता है। और यहाँ प्रश्न प्रभुपाद जी ने बोला, इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो इन चीजों में कर्मों में नहीं फंसता है, वो तो सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है। अर्थात वो क्या करता है, हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। इंद्रिय तृप्ति को निकाल कर यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो फिर वो कर्म बंधन से बिल्कुल बच जाता है और उसे कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। तो यहाँ पर हमने अर्जुन के तीन प्रश्नों का उत्तर सुना भगवान के मुखारविंद से। आगे भी भगवान अर्जुन के अन्य प्रश्नों को क्लियर करेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूँ। हरे कृष्ण।